समन्वयशील स्वच्छंदतावादी समीक्षक आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी का समस्त गद्य साहित्य उनके समीक्षक और विचारक व्यक्तित्व का साक्षी है। सन 1930 ईस्वी के आसपास श्री नंद दुलारी वाजपेयी प्रसाद पंत और निराला के समर्थक ओजस्वी आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में आए थे और आपकी पहली कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ने सहसा हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। शीघ्र ही आप विशिष्ट और नवागत के प्रेमी, प्रशंसक और विवेचक के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित हो गए थे। उस समय आप प्रगल्भ भावोन्मेष को महत्व देते हुए बहुत कुछ अपनी वैयक्तिक रुचि को ही निर्णायक मानकर चल रहे थे। 1940 ईस्वी में आपकी दूसरी कृति जयशंकर प्रसाद प्रकाशित हुई। अब तक आप में एक वस्तुन्मुखी दृष्टि का विकास हो चला था, फिर भी नीतिवादिता और शास्त्रीयता के स्थान पर आनंदवादी और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण आपको अधिक मर्मस्पर्शी प्रतीत हुआ। इसके बाद आपकी तीसरी पुस्तक प्रेमचंद प्रकाशित हुई। इसमें आपकी दृष्टि अधिक संतुलित है और आपने प्रेमचंद के सबल पक्ष को सराहा है। आधुनिक युग के साहित्य विकास का मूल्यांकन करने वाली आपकी चौथी कृति आधुनिक साहित्य है। इसमें आपका आलोचक व्यक्तित्व अधिक निखर कर सामने आया है। आपकी समीक्षा दृष्टि व्यापक हुई है और आपने साहित्यिकों, साहित्य धाराओं और साहित्य सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा करके मूल्यांकन की सर्वमान्य भूमि प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। सन 1955 में आपकी महत्वपूर्ण समीक्षा कृति नया साहित्य नए प्रश्न प्रकाशित हुई। इसमें प्रवृत्तियों और सिद्धांतों का विवेचन अधिक किया गया है, व्यक्तियों की चर्चा कम हुई है। प्रारंभ में निकष शीर्षक के अंतर्गत आपने अपना आत्मनिरीक्षण प्रस्तुत किया है। यह निकष आपकी आलोचना की मूल मनोभूमि को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कृति में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा की गई है और नवीन साहित्य प्रवृत्तियों की गहरी छानबीन के उपरांत तीन प्रकार के नए आक्रमणों से बचकर स्वस्थ रचनात्मक साहित्य के उन्मेष को बल देने के लिए प्रेरित किया गया है। साहित्य संबंधी हमारी क्रमागत धारणाओं को डामाडोल करने वाले आक्रामक आंदोलनों में बुद्धितत्व के नितांत बहिष्कार, रुग्ण और कुंठित मनोवृत्तियों के महत्व की एकांत स्वीकृति और साहित्य के आस्वाद की उदात्तता का अस्वीकार, ये तीन आंदोलन ऐसे हैं जो वाजपेयी जी की दृष्टि में साहित्य को अंधेरी गलियों में ले जाने वाले हैं। इनसे बचकर हमें रचनात्मक क्रियाशील जनतंत्र को प्रतिष्ठित करना है, यही वाजपेयी जी की मुख्य स्थापना है। प्राचीन कवियों में वाजपेयी जी ने सूरदास को अधिक महत्व दिया है। उनकी महाकवि सूरदास कृति सौंदर्यनिष्ठ साहित्य चेतना के विश्लेषण का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपके स्फुट निबंधों के तीन संग्रह राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध और प्रकीर्णिका भी प्रकाशित हुए हैं। महाकवि निराला भी लगभग इसी समय प्रकाशित हुआ। कवि निराला में महाकवि की जीवनी, व्यक्तित्व, कृतियां, काव्य विकास, काव्य रूप, काव्य भाषा, कला, दार्शनिकता आदि अध्यायों में एक सर्वांगीण समीक्षा प्रस्तुत हुई है। आपने एक अध्याय में प्रसाद और निराला का तुलनात्मक मूल्यांकन भी किया है। निबंध संग्रहों से आपके साहित्य और भाषा संबंधी अद्यतन विचारों की सूचना मिलती है। 1967 ईस्वी में वाजपेयी जी ने धर्मयुग में नई कविता के संबंध में एक लेखमाला लिखकर नए कवियों को भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। अब ये निबंध नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। आचार्य वाजपेयी के दिवंगत होने के बाद उनकी कई कृतियां प्रकाशित थी। इनमें कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा तथा रीति और शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन कृतियों में आचार्य वाजपेयी के समय समय पर लिखे गए स्फुट निबंधों को क्रमबद्ध करके प्रकाशित कर दिया गया है। वस्तुतः आपकी अंतिम कृति नई कविता ही है। इस प्रकार छायावाद युग से चलकर नई कविता तक की समीक्षा यात्रा करते हुए आपने हिंदी आलोचना के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका संपूर्ण कृतित्व राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना से समन्वित है। हमें आपकी साहित्यिक मान्यताओं और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए आपके संपूर्ण कृतित्व को आधार बनाना होगा। साहित्यिक मान्यताएं। वाजपेयी जी ने साहित्य का विवेचन कई संदर्भों में किया है, राष्ट्रीय साहित्य, साहित्यकार का दायित्व, समाज और साहित्य, सामयिक परिवेश, साहित्य और सामाजिक जीवन आदि कई निबंधों में साहित्य के संबंध में आपके विचार व्यक्त हुए हैं। यह विचार एक केंद्रीय आस्था, मानव जीवन के मार्मिक एवं स्वस्थ चेतना से जुड़े हुए हैं। स्वयं वाजपेयी जी के शब्दों में विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों के अभिव्यक्ति यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। अर्थात मानव जीवन ही साहित्य या काव्य की वस्तु होता है। जीवन कल्पना के माध्यम से साहित्य में रूपायित होता है। कल्पना ही काव्य या साहित्य का नियामक तत्व है। कल्पना भावाश्रित होती है, कल्पना भावाश्रित रूप है। इस प्रकार साहित्य भी भावाश्रित रूप है। साहित्य में रूप और वस्तु एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। रूप या कल्पना का उन्मेष स्वप्न, दिवा स्वप्न, बाल कल्पना और साहित्य सभी में होता है। साहित्य में रूप तत्व बहुजन संवेद्य होता है, इसीलिए उसमें अंग संगति, अनुक्रम और बौद्धिक ग्राह्यता के तत्व भी होते हैं। यह सारी सामग्री शब्दों के माध्यम से आकार ग्रहण करती है। इस रूप या सौंदर्य सृष्टि का उद्देश्य उच्च कोटि के लौकिक या अलौकिक आनंद की सृष्टि है। वाजपेयी जी ने इन विचारों को सात जिज्ञासाओं, जिन्हें उन्होंने सप्तसूत्री जिज्ञासाएं कहा है, के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उपर्युक्त साहित्यिक मान्यताओं में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टियों का समन्वय हो गया है। कल्पना को काव्य का नियामक तत्व मानना और उसके द्वारा रचित साहित्य को सौंदर्य सृष्टि कहना पाश्चात्य दृष्टिकोण की स्वीकृति है और इस सृष्टि का उद्देश्य लौकिक या अलौकिक आनंद की उपलब्धि बताना भारतीय रस सिद्धांत को मान्यता देना है, क्योंकि रस आनंद रूप ही है। वाजपेयी जी ने अन्यत्र कहा भी है, साहित्य की आत्मा रस अंततः क्या है? वह मानव मात्र की वह आनंदात्मक प्रतिक्रिया है जो श्रेष्ठ साहित्य को पढ़कर उसे उपलब्ध होती है। वाजपेयी जी साहित्य के संदर्भ में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण का ही समन्वय नहीं चाहते, प्राचीन और नवीन का भी समन्वय चाहते हैं। आपका स्पष्ट मत है कि वेद और उपनिषद से लेकर बुद्ध गांधी तक भारतीय चिंतन और जीवन दर्शन अपनी ऊर्जा से विकसित और पुष्पित होता रहा है। इन सबको अपनी आत्मा में स्थान देकर अपने स्वतंत्र चिंतन से कुछ निर्माण करके ही हम बुद्धिवादी निर्माता और भारतीय लेखक होने का दावा कर सकते हैं। वाजपेयी जी पाश्चात्य साहित्य विवेचन के नवीनतम अनुसंधानों के प्रति भी उदासीन नहीं है। वे जानते हैं कि कुल मिलाकर यूरोप की साहित्य तत्व संबंधी जिज्ञासा बड़ी तात्विक गहराइयों में पहुंच चुकी है। उन्होंने इन तात्विक गहराइयों में भलीभांति झांकने और भारतीय साहित्य शास्त्र के विविध संप्रदायों के ऐतिहासिक विकास एवं उनके पारस्परिक अंतःसंबंध को परखने के बाद ही अपनी उपर्युक्त मान्यताएं स्थिर की हैं। वाजपेयी जी के समीक्षात्मक दृष्टिकोण को समझने में उनकी यह मान्यताएं बहुत दूर तक सहायक हो सकती हैं। समीक्षात्मक दृष्टिकोण। वाजपेयी जी का समीक्षात्मक दृष्टिकोण हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका, नया साहित्य, नए प्रश्न के आरंभ में स्थापित उनके 29 पृष्ठों के निकष तथा उनकी सूरदास प्रसाद की व्यवहारिक समीक्षाओं में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। नया साहित्य नए प्रश्न में उन्होंने समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता लिखकर अध्येताओं के कार्य को हल्का कर दिया है। हम यहाँ उनकी इन सभी कृतियों में बिखरे विचार सूत्रों के आधार पर उनकी समीक्षा दृष्टि को समझने की चेष्टा करेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी ने आलोचना संबंधी अपने सात चेष्टाओं की ओर संकेत किया है। कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीक का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन और काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन। विशेष बात यह है कि इन चेष्टाओं में ऊपर से नीचे की ओर प्रमुखता कम होती गई है। इस प्रकार वाजपेयी जी मूलतः कवि की अंतर्वृत्तियों और कलात्मक सौष्ठव पर बल देते हैं। आधुनिक साहित्य की भूमिका में आप पश्चिम के अस्ताचलगामी सूर्य से प्रकाशित चार प्रमुख समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कहते हैं। वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित फ्रायड, यूंग और लेस से प्रभावित। दूसरा, समाजवादी समीक्षा यानी मार्क्सवादी समीक्षा। तीसरा, कलावादी, कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा। चौथा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा। इसी ग्रंथ में आपका एक और महत्वपूर्ण वाक्य है जिसको ध्यान में रखना होगा। आपने विश्वास पूर्वक कहा है कि पिछले 50 वर्षों में हिंदी साहित्य की जो मर्यादा बन गई है उसे हम किसी भी स्थिति में टूटने न देंगे। इसका अर्थ यह है कि आप हिंदी साहित्य की पूर्व निर्मित मर्यादा की रक्षा करते हुए उसके अनुकूल पाश्चात्य समीक्षा पद्धतियों के विवेकपूर्ण स्वीकार को उचित समझते हैं। वाजपेयी जी को भारतीय साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान ही नहीं, सम्यक बोध भी है। यह उनके भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण एवं भारतीय साहित्य शास्त्र की रूपरेखा शीर्षक निबंधों तथा अन्य व्यावहारिक समीक्षाओं से सुस्पष्ट है। रस को आप भारतीय काव्यशास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना से पक्ष से संबद्ध मानते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के नवनिर्माण के लिए आप इन प्राचीन मान्यताओं को व्यापक अर्थ में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। साथ ही काव्यशास्त्र के आधुनिक इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त दो प्रकार की सामग्रियों का आप संतुलित उपयोग करना चाहते हैं। एक तो युग विशेष की प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं का विवरण और दूसरे मुख्य विषय के साथ कला और साहित्य के क्षेत्र में होने वाले तत्कालीन सृजन कार्यों का परिचय। नया साहित्य नए प्रश्न में अपनी समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी ने कहा है, प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी भारतीय धारणा और मत की तुलना तत्संबंधी विदेशी मतों से भी करनी पड़ेगी। भाव विनियोग संबंधी व्यंजना या ध्वनि सिद्धांत भारत की विशेष संपत्ति है। इसे हम पश्चिम को भारत की देन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। साहित्य में भावना और बुद्धि के समन्वय तथा काव्य की नैतिकता जैसे प्रश्नों का पाश्चात्य साहित्य शास्त्र बहुत समय से विचार कर रहा है। उसकी उपपत्तियों का हमें ध्यान रखना होगा। प्रकट है कि वाजपेयी जी पाश्चात्य और भारतीय सिद्धांतों के सुंदरतम तत्वों का समन्वय चाहते हैं। वे भारतीय विचारधारा को आदर्शोन्मुख रखते हुए स्वस्थ और विकासोन्मुख यथार्थवाद को भी स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रकृतिवाद यथार्थवाद, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद तथा निराशा और कुंठावादी यथार्थवाद से साहित्य को अलग रखने की बात कही है और इन सब को अतिक्रांत करने वाले सामाजिक यथार्थवाद को राष्ट्रीय उत्थान में सहायक मानकर उसे ग्रहण करने की सलाह दी है। भारतीय साहित्य शास्त्र में भावक या समीक्षक को सहृदय कहा गया है। वाजपेयी जी सहृदय का अर्थ मानवीय संवेदनाओं से परिचित व्यक्ति करते हुए समीक्षा के क्षेत्र में उसके निर्णय की प्रामाणिकता को भी अक्षुण बनाए रखना चाहते हैं। नई कविता के संदर्भ में चर्चित क्षणवाद, संशयवाद, लघु मानववाद, अस्तित्ववाद आदि को आप युद्धों के विभीषिका और प्रयोगवाद के दुष्परिणाम के रूप में देखते हैं और यह देखकर प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि नई कविता में एक समरसता आ रही है और यह समरसता भारतीय काव्य चिंतन दर्शन विचारधाराओं के योग से बन रही है। उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी पश्चिम के अतिवादों से बचते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र की मान्यताओं को समुन्नत एवं व्यापक अर्थ में प्रतिष्ठित करके उनके आधार पर कवि की अंतर्वृत्तियों का सामाजिक एवं सहज मानवीय संवेदनाओं की भूमि पर विश्लेषण करना चाहते हैं। वाजपेयी जी के समीक्षात्मक दृष्टिकोण समझने के लिए उनकी व्यावहारिक समीक्षाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। सूर्य की आलोचना में वे लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप, सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। गोचारण तथा गोवर्धन धारण के प्रसंग कथात्मक हैं, किंतु उन कथाओं को भी सजाकर सुंदर भावगीतों में परिणत कर दिया गया है। हम आसानी से यह नहीं समझ पाते कि कथानक के भीतर रूप सौंदर्य अथवा मनोगीतियों के चित्र देख रहे हैं अथवा मनोगीतियों के और रूप के वर्णना के भीतर कथा का विकास देख रहे हैं। स्पष्ट है कि वाजपेयी जी व्यावहारिक समीक्षा में सौंदर्य बोध पर अधिक बल देते हैं। घटनाक्रम तथा परिस्थिति विशेष को आप पृष्ठभूमि में उपस्थित करना अधिक समीचीन मानते हैं। कदाचित इसीलिए आधुनिक कवियों में प्रसाद आपको सर्वप्रिय है। प्रसाद ने भी रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया है। घटनाओं की विशुद्धता उनमें नहीं है। वाजपेयी जी रूप का स्थूल चित्रण भी नहीं चाहते, वे चेतन चेष्टाओं की झलक देखना चाहते हैं। कहना चाहे तो कह सकते हैं कि यदि आचार्य शुक्ल के काव्य सिद्धांत तुलसी के आधार पर निर्मित हुए हैं तो वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। प्रसाद जी रसवादी कलाकार थे, वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक, किंतु प्रसाद जी का रसवाद नैतिकता या स्थूल उपयोगिता का आधार लेकर नहीं चला है। वाजपेयी जी भी नैतिकता का बंधन स्वीकार नहीं करते। सौंदर्य स्वतः शिव है, ऐसा आपका विश्वास है, इसलिए आप कहते हैं। मेरी समझ में इसका सीधा उत्तर यह है कि महान कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के आग्रह से वाजपेयी जी को एक खतरा दिखलाई पड़ता है। वे कहते हैं, इसमें साहित्य और समाज की विविध ऐतिहासिक स्थितियों और कवियों की रुचि और परिस्थिति से बनने वाले काव्य व्यक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। अपनी इसी मान्यता के कारण आपने आईए रिचर्ड्स तथा उनके समर्थक आचार्य शुक्ल दोनों से अपना पथ अलग कर लिया है। सूर और प्रसाद के अतिरिक्त आपने अन्य अनेक रचनाकारों की भी समीक्षा की है। उनकी ये समीक्षाएं उनकी दृष्टि को व्यापक और विशद रूप में स्पष्ट करती हैं। एक समीक्षक के रूप में उन्हें द्विवेदी जी का नवीन साहित्य भवन, कट्टर प्रादेशिक राष्ट्रीयता के प्रभाव से निर्मित आचार्य शुक्ल की काव्य संवेदना, नीति चक्र के स्थूल शासन से घिरी हुई प्रेमचंद का मानसिक संगठन, कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना एक स्थूल भौगोलिक चौहद्दी में सिमटी हुई प्रतीत हुई है। यही नहीं, उन्हें महादेवी की अंतर्मुखता, खटकी, जैनेन्द्र का आत्मपीड़न, अर्थहीन एवं राहुल सांकृत्यायन तथा यशपाल की रचना दृष्टि वैज्ञानिक यथार्थवाद के सूत्र में बधी हुई प्रतीत हुई। अश्क का यथार्थवाद उन्हें उद्देश्यहीन तथा जैनेन्द्र और अज्ञ के उपन्यासों का सामाजिक प्रभाव संदिग्ध प्रतीत हुआ है। आगे चलकर प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आग्रह, प्रयोगवादियों के छुड़ाधर न्यायिक प्रयोग, नए उपन्यासों की वस्तुतत्वहीनता और नई कविता की दिशाहीनता ने भी उन्हें चिंतित एवं क्षुब्ध किया। हो सकता है कि अनेक अवसरों पर उनकी चिंता और क्षोभ सही हों, किंतु यह निर्विवाद है कि स्वच्छंदतावादी संस्कारों से बधे होने के कारण ही नई काव्य प्रवृत्तियों के मूल्यांकन में उन्हें कठिनाई हुई है। सौष्ठववादी समीक्षकों की भांति उन्होंने सदैव काव्य सौंदर्य निरूपण करने वाले दार्शनिक सिद्धांतों और मतों को महत्व न देकर अपनी व्यक्तिगत रुचि और सौंदर्य संवेदना को ही प्रमाण माना है। अपने लेखन के आरंभिक चरण में उन्होंने वाल्टर पेटर जैसे सौष्ठववादी समीक्षक तथा वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स आदि स्वच्छंदतावादी एवं प्रसाद, पंत और निराला आदि छायावादी कवियों के अध्ययन से जो काव्य संस्कार अर्जित किया था उसने अंत तक उन्हें बांध रखा। उनकी समन्वयशीलता उसका अतिक्रमण नहीं कर सकी। वाजपेयी जी के विषय में कहा गया है कि यह बतलाना कि उनका अमुक दृष्टिकोण पर आग्रह है कठिन है, क्योंकि उनका स्वयं का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहा है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। कालांतर में उनकी दृष्टि कुछ व्यापक और संतुलित हुई है, उनमें कुछ वस्तुन्मुखता आई है, आवेग और अभिरुचि का आग्रह कम हुआ है। उन्होंने समग्र दृष्टि से मूल्यांकन करने का औचित्य समझा है और कलाकारों के संबंध में उनकी धारणाएं भी बदली हैं, किंतु उनकी आलोचना का मानदंड नहीं बदला है। उन्होंने अपनी पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक के संबंध में स्वयं कहा है, यदि आज पुस्तक की पुनरावृत्ति करनी हो तो मैं इनमें से प्रत्येक लेखक की वैयक्तिक और सामाजिक जीवनी, उसकी क्रियाकलाप और मनोभावना तथा उनकी धारणाओं, विचारों और जीवन संबंधी आदर्शों के क्रम के विकास का अधिक प्रामाणिक और संतुलित विवरण देना चाहूंगा। प्रस्तुत निबंधों में मेरी यह वस्तुन्मुखी अभिरुचि व्यक्त नहीं हो सकी है। यद्यपि इसके कारण कवियों और लेखकों के साहित्यिक मूल्यांकन में कोई बड़ी कमी आ गई है यह कहना अतिरंजना होगी। समय के साथ वाजपेयी जी के चिंतन और समीक्षा पद्धति में गहराई आती गई है। वे सच्चे भावक हैं। सौंदर्य के प्रति उनका आग्रह पहले भी था और आज भी है। प्रेमचंद की आलोचना में उन्होंने कहा है, इस शिव शब्द को हम व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहते हैं, सत्य और सुंदर पर्याप्त है। वाजपेयी जी न तो प्रभाववादी आलोचकों की भांति हृदय की क्षणिक प्रतिक्रियाओं को आलोचना मानते हैं और न तो वादग्रस्त प्रचारों को। उनका विश्वास है कि सुंदरतम साहित्यिक रचनाओं में सार्वजनिकता होती है, युग का प्रतिबंध या वाद का वितंडा नहीं होता। यह सत्य नहीं है कि भी मनुष्य और अपने युग की परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों मत नितांत विरोधी नहीं है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर आप आगे बढ़े हैं। समीक्षा शैली। शैली की दृष्टि से आपकी समीक्षा व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक है। आपके विवेचन में गहराई, संयम और शालीनता है। कहीं कहीं आप किसी कृति के संबंध में नवीन बातों का उल्लेख करते समय क्रमशः नंबर देते हुए पहली, दूसरी, तीसरी विशेषताओं का उल्लेख करते चलते हैं। यह पद्धति अपने को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए ही अपनाई गई है। शुक्ल जी की तरह आप किसी एक तथ्य को सूत्र रूप में उपस्थित करके उसकी व्याख्या नहीं करते, वरन बराबर एक के बाद एक दूसरे तथ्यों का उल्लेख करते चलते हैं। व्याख्या को पूर्ण एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए आप तुलना का आधार भी ग्रहण करते हैं। साकेत की आधुनिकता पर विचार करते समय आपने कामायनी, कुरुक्षेत्र और मानस सभी से उसकी तुलना की है। प्रसाद की आलोचनाओं में कहीं कहीं अधिक रसमग्न हो जाने के कारण आप आह्लादित से हो गए हैं और आपकी समीक्षा में प्रभाववादी समीक्षा की झलक आ गई है। सूर्य की आलोचना में भी यह स्थिति कहीं कहीं देखी जा सकती है। वैसे वाजपेयी जी ने इस प्रकार की आलोचना की निंदा की है। वे कहते हैं, जिन्हें छायावाद की नई प्रगति का पृष्ठपोषक समझा जाता था, वे समीक्षा के नाम पर बिल्कुल कोरे थे। वे समीक्षक नामधारी अपना स्वतंत्र गद्य काव्य लिखने में लगे हुए थे, जिसे वे अपनी मर्मज्ञता के कारण समीक्षा करने लगे थे और पाठकों का भावुक दल उन्हें समीक्षक कहकर बुलाने भी लगा था। कहीं कहीं अपनी आलोचनाओं में आलोच्य कृति के अवांछित स्थल को लेकर आप आवेश में आ जाते हैं और एक साथ कई प्रश्न कर जाते हैं। शेखर एक जीवनी की आलोचना में आप कहते हैं, शशि दुखिनी है, शेखर दुखी है। शशि केवल शेखर का उन्माद दूर करना चाहती है। वह बहुत प्रयत्न करती है और सामाजिक सीमा तक पहुंचती है, पति द्वारा परित्यक्त हो जाती है। अब वह और भी निराश्रित हो गई है, किंतु शेखर को और भी बल मिला। संस्कार के लिए, समाधान के लिए, शांति के लिए नहीं, आत्म प्रवंचना के लिए, विषाद तृप्ति के लिए, अहम पूर्ति के लिए। यथास्थान। वाजपेयी जी व्यंग करने से भी नहीं चूकते। प्रसाद जी के कुछ आलोचकों पर व्यंग करते हुए आपने लिखा है, हमारे विश्वविद्यालयों के गंभीरतावादी महानुभाव जो सनातन शास्त्रीय पद्धति पर साहित्य के सिद्धांतों का संग्रह करने में महाराज दक्ष की लक्षणा का लक्ष्य भेद कर चुके हैं, पर जिनका सामसामायिक साहित्य की परीक्षा करने का व्यावहारिक ज्ञान कछुए के मुंह के समान सदैव काया प्रवेश ही किए रहता है, उक्त अंतर्दृष्टि के बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। कृतियों के मूल्यांकन क्रम में आप मुख्य रूप से उनकी आधारभूत और तात्विक विशेषताओं को स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी दृष्टि में निराला की मूलभूत विशेषता उनके काव्य की मानवतावादी भूमि है और पंत की उनकी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा और कल्पना शक्ति। छायावादी कवियों की कल्पनाचारुता के आप प्रशंसक हैं, किंतु क्लिष्ट कल्पना को आपने कभी महत्व नहीं दिया। महादेवी की कविताओं में कहीं कहीं क्लिष्ट कल्पनाएं आपको खटकती हैं। महादेवी की निम्नांकित पंक्तियां, रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके बिखरे वैभव पर जब रोती थी उजियाली। उद्धृत करने के बाद आप कहते हैं, रजनी का झिलमिल तारों की जाली ओढ़कर जाना बड़ी ही सरस और मार्मिक कल्पना है, किंतु उजियाली का रोना हम साधारणतः कहीं नहीं देखते, वह प्रायः हंसती ही आती है। यहाँ अपनी अभ्यस्त अनुभूतियों को दबाकर यह कल्पना करनी पड़ती है कि प्रभातकाल की नमी अथवा उस आंसू के रूप में उजियाली रो रही है। वैसे कविता की पंक्तियों को उद्धृत करके उसकी व्याख्या करते हुए उसके सौंदर्य का निदर्शन वाजपेयी जी ने बहुत कम किया है। वे प्रायः सौंदर्य के आधारभूत तत्वों को ही सूत्रबद्ध करते चलते हैं। उनका मूल्यांकन विवेचन मूलतः इस बात पर निर्भर है कि रचना ने उनकी सौंदर्य चेतना को कितना और किस रूप में प्रभावित किया है। उन्होंने काव्यार्थ की मीमांसा करते हुए शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धीचारिता का विश्लेषण बहुत कम किया है। निराला की राम की शक्ति पूजा जैसी सशक्त और कालजयी रचना को उन्होंने पांडित्यपूर्ण निर्मिति कहा है और भाव संवेदना एवं मार्मिकता की दृष्टि से उसे बादल राग और यमुना के प्रति जैसी रचनाओं से कमजोर माना है। तात्पर्य यह है कि वाजपेयी जी की समीक्षा शैली में प्रभाव जनित प्रगल्भता अधिक है, वैश्लेषिक घनत्व कम। इस प्रकार वाजपेयी जी की समीक्षा शैली सौंदर्य की खोज और उसकी व्याख्या की शैली है। जहाँ सौंदर्य है वहाँ आप उसके मर्म के भावक बनकर उसकी विशेषता और प्रभाव को व्यक्त करने लगते हैं। जहाँ वह नहीं है या उस पर आवरण है वहाँ आप आवेश में आ जाते हैं और विरोध या व्यंग्य करने लगते हैं। विवेचन की यह शैली आपने पाश्चात्य समीक्षा पद्धति को अपने अनुकूल बनाकर निर्मित की है। इसमें परिवर्तित काव्य संवेदना का सहज स्वीकार है, नवीन सौंदर्य निश्चय सांस्कृतिक चेतना की झलक है। उसमें चिंतन का घनत्व भले ही न हो, एक सच्चे भावक की मर्मग्राहिणी प्रज्ञा का आत्मविश्वासपूर्ण उन्मेष साफ दिखाई पड़ता है। मूल्यांकन। वाजपेयी जी ने द्विवेदी युग के कवियों और लेखकों से आरंभ करके नई कविता के रचयिताओं पर नए उपन्यासकारों एवं नाटककारों तक की समीक्षा की है। सन 1900 से लेकर 1967 ईस्वी तक का संपूर्ण हिंदी साहित्य उनके सामने रहा है। वाजपेयी जी ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और आरोपित नैतिकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे मैथिली शरण गुप्त को समर्थन नहीं दे सके। प्रिय प्रवास में भी उन्हें मातृभाषा संगीत का सौंदर्य दिखाई दिया। प्रेमचंद का उपदेशक रूप भी उन्हें पसंद नहीं आया और आचार्य शुक्ल का नैतिकता के अभेद्य कवच से मंडित लोकमंगल का तत्व भी उन्हें ग्राह्य नहीं हुआ। छायावाद युग का काव्य आपके आदर्शों का प्रतिनिधित्व कर सका है, या यो कहिए कि छायावाद का सौंदर्य निष्ठ कल्पनाशील भावोन्मेष आपके आदर्शों का मूल प्रेरक है। राष्ट्रीय स्वातंत्र, प्रजातंत्रीय जीवन व्यवस्था, आंतरिक मानव मूल्यों का उत्कर्ष और कल्पना का सहज उन्मेष वाजपेयी जी के आलोचक व्यक्तित्व के संगठक तत्व है। इन्हीं के आधार पर आपने अपनी प्रारंभिक आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। बात को प्रौढ़ और परिपक्व होने पर अध्ययन के विस्तार और अनुभव की गहराई के साथ आपका मानदंड अपेक्षाकृत उदार और मर्यादित हुआ। आपके मूल्यांकन की भूमि कुछ विस्तृत हुई, किंतु आपके विचारों की मूल प्रेरणा छायावाद की सौंदर्यनिष्ठ चेतना ही रही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि छायावादोत्तर युग के अनेक कवियों एवं लेखकों की आलोचना करते हुए आपने किसी एक को भी अपना पूरा समर्थन नहीं दिया। 1950 ईस्वी तक वाजपेयी जी प्रसाद और प्रेमचंद तथा निराला और पंत की निष्ठामय रागनी और जनवादी स्वर से किसी प्रकार नीचे उतरने या आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। माधवी वर्मा की अंतर्मुखता, जैनेन्द्र की आत्मकेंद्रित रोमानी कल्पना, लक्ष्मीनारायण मिश्र के पात्रों की निष्क्रियता, यशपाल और राहुल के निषेधात्मक दृष्टि, इलाचंद्र जोशी के मनोवैज्ञानिक प्रयोग, उपेंद्रनाथ अश्क का उद्देश्यहीन यथार्थ, प्रगतिवाद का मतवादी आग्रह, प्रयोगवाद का बीहण गुणाक्षर न्यायिक प्रयोग, अज्ञे और भारती की एक विशेष प्रकार की अनास्था और कुंठा, प्रतीकवाद, प्रतिबिंबवाद, अंतश्चेतनावाद और अस्तित्ववाद का विदेशीपन, रसोन्मुखता, अप्रेषणीयता तथा अतिरिक्त बौद्धिकता, नई कविता की दिशाहीनता, नए उपन्यासों की वस्तु तत्व क्षीणता, आंचलिक उपन्यासों का गंदलापन तथा नए नाटकों की यथार्थवादिता, ये सब कुछ वाजपेयी जी को खटका है। ऐसी स्थिति में वाजपेयी जी ने स्वयं जो आपत्तियां आचार्य शुक्ल के संबंध में उठाई थे वे उन पर भी लागू हो जाती हैं। वाजपेयी जी की विशेषता यह है कि वे भारतीय जीवन दृष्टि को अक्षुण रखना चाहते हैं। वे किसी भी नवीन तत्व के विरोधी नहीं हैं, बशर्ते कि वह अपनी परंपराओं के भीतर से विकसित होकर सामने आया हो। वाजपेयी जी जीवन की गति को धारावाहिक विकास के रूप में देखते हैं। उन्हें बाहर का नैसर्गिक सौंदर्य और भीतर की अकुंठ भाव निष्ठा प्रिय है। वे राष्ट्र के स्वाभिमान पर किसी प्रकार की ठेस नहीं लगने देना चाहते हैं। ये व्यक्ति के भीतर से समाज की प्रतिच्छाया देखना चाहते हैं। उन्होंने आलोचना के मान के रूप में सौंदर्य की ऐसी सहज चेतना को प्रतिष्ठित करना चाहा है जिसमें व्यक्ति और राज समाज राष्ट्र और विश्व बाहर और भीतर बुद्धि और भाव वस्तु और रूप नैतिकता और कला प्राचीन और नवीन सभी मिलकर एक संवेदना या संस्कार बन जाए। स्वच्छंदतावादी सौष्ठवादी समीक्षक के रूप में प्रख्यात आचार्य वाजपेयी के मूल्यांकन के संदर्भ में एक प्रश्न यह उठता है कि साहित्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनकी मूल्यवत्ता क्या है। अपनी सीमाओं के बावजूद आचार्य शुक्ल आज भी हिंदी आलोचना के संदर्भ पुरुष के रूप में मान्य है। विरोध हो या समर्थन चर्चा उन्हीं की होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि साहित्य की पूर्ण स्वायत्तता या साहित्य की स्वतंत्र संस्कृति का सिद्धांत जिसके आचार्य वाजपेयी पक्षधर थे साहित्य इतिहास के दीर्घकालीन विस्तार में अपनी सार्थकता प्रमाणित नहीं कर पाता। व्यापक सामाजिक हितों की अपेक्षा करके कोई भी समीक्षा सिद्धांत काल की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। आचार्य वाजपेयी का महत्व इस रूप में अवश्य मान्य है कि उन्होंने नीतिवादी आग्रह से साहित्य को मुक्त किया और व्यापक सांस्कृतिक जागरण के नवोन्मेष से प्रेरित नवयुग के स्वप्न दृष्टा नए रचनाकारों को समर्थन देकर क्रांतिकारी स्वच्छंदतावाद का पथ प्रशस्त किया। अपनी इस विशेषता के कारण वाजपेयी जी हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ के रूप में मान्य रहेंगे। वाजपेयी जी की चिंतन भूमि। वाजपेयी जी सहानुभूति को साहित्य का प्रमुख प्रेरक तत्व मानते हैं। साहित्य की स्वतंत्र संस्कृति की बात करते हैं। वे साहित्य को नीतिवाद और उपयोगितावाद के दायरे से मुक्त रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि साहित्य आत्मविज्ञापन का माध्यम बने। वे साहित्य साधना को तपस्या और यज्ञ के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की यह भाव भूमि है। आचार्य वाजपेयी की चिंतन की भूमि 1932 के आसपास की। इस समय वे बनारसी दास चतुर्वेदी, भवानी दयाल सन्यासी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन सभी के प्रतिपक्ष में खड़े थे। 1955 ईस्वी में जब वाजपेयी जी ने नया साहित्य नए प्रश्न पुस्तक प्रकाशित कराई, तब उन्होंने उसके आरंभ में निकष शीर्षक के अंतर्गत पुनः अपने विचार व्यक्त किए और कहा, व्यक्ति के असीम आध्यात्मिक मूल्य को स्वीकार करते हुए भी हम व्यक्तिवादी नहीं हैं। सामाजिक अर्थनीति के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी हम वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक कृषि प्रकार के भूतवादी नहीं हैं। इस पुस्तक में आपने 1932 के आसपास की गई अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियों की एकांगिकता को स्वीकार किया, किंतु यह भी कहा कि एकांगी होने पर भी उनकी समीक्षा पद्धति उस समय की रचनात्मक और प्रगतिशील है। वे कहते हैं, साहित्य की ही भांति समीक्षा के दो मुख्य धाराएं हैं। एक वह जिसमें हम संरक्षणशील या स्थितिशील धारा कह सकते हैं और दूसरी वह जिसे रचनात्मक या प्रगतिशील धारा कहा जाएगा। पहली धारा का समीक्षक साहित्यिक चारुता और परिष्कार के अभिलाषी होते हैं। दूसरी धारा का समीक्षक प्रगल्भ भावोन्मेष को प्रोत्साहन देते हैं। मेरी पहली पुस्तक में जिसका यहाँ जिक्र चल रहा है, दूसरी धारा ही प्रमुख है। ऐसा लगता है कि छायावाद के उन्मेष काल का प्रगल्भ भावोन्मेष 1955 ईस्वी तक आते आते युग की वास्तविकता से टकराने लगा था। वाजपेयी जी चिंतन की कोई ऐसी भूमि तलाश रहे थे जो उनके पूर्व काव्य संस्कारों में आमूल परिवर्तन के बिना युग की नई वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित कर सके। वे आध्यात्मिक है किंतु व्यक्तिवादी नहीं, समाजवादी व्यवस्था का स्वीकार करते हैं किंतु भूतवादी नहीं है। इन्हीं सीमाओं के भीतर वे अपने युग की वस्तु स्थिति पर विचार करते हैं। आज की भारतीय वस्तु स्थिति क्या है? हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है किंतु उसका बृहत अंश आज भी अशिक्षित और अर्धनग्न है और आधे पेट खाकर जीवन यापन कर रहा है। उसके लिए हम क्या करें? आज का जनवादी लेखक क्या करे? मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई देता है। आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग और कष्ट सहिष्णुता अपनानी होगी। उसे प्रेमचंद और टॉलस्टॉय के मार्ग पर चलना हो। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं, हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव समूह की कल्पना करते हैं वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा, उसे पूर्णतः सांस्कृतिक और नैतिक मानव भी होना चाहिए। यहाँ भी मार्क्सवादी शिक्षाएं और उपचार मुझे तो अधूरे दिखाई देते हैं। उनमें तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत मुझे भारतीय जीवन के अधिक अनुरूप जान पड़ता है। उपर्युक्त पूरे वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत त्याग और कष्ट, सहिष्णुता, प्रेमचंद और राष्ट्राय का मार्ग, पूर्णतः सांस्कृतिक नैतिक मानव होने की आवश्यकता और अंत में गांधी के सर्वोदय सिद्धांत की ग्राह्यता, यह सब वाजपेयी जी की गांधीवादी विचारधारा के स्वीकार का द्योतक है। इस समय तक वे गांधीवाद की भूमि पर मार्क्सवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वे प्रगतिवादी समीक्षा की देन को ही रेखांकित करते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि प्रगतिवादी समीक्षा ने हिंदी को कुछ दिया ही नहीं, उसने दो वस्तुएं मुख्य रूप से दी हैं। प्रथम यह कि काव्य साहित्य का संबंध सामाजिक वास्तविकता से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति सजग और संवेदनशील है। द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दूर होगा वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा, न केवल सामाजिक दृष्टि से वह अनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन और ह्रासोन्मुख होगा। यहाँ जिस प्रगतिवाद को वाजपेयी जी ने आंशिक स्वीकृति दी है वह उनके प्रगल्भ भावोन्मेष को प्रोत्साहन देने वाली प्रगतिशीलता से भिन्न है। प्रश्न उठता है कि जिस समय वाजपेयी जी साहित्य की स्वतंत्र संस्कृति की बात कर रहे थे और प्रगल्भ भावोन्मेष को प्रोत्साहन दे रहे थे, उस समय के रचनाकारों के सामने प्रगल्भता से अलग कोई ठोस ऐतिहासिक सामाजिक प्रेरणा भूमि थी या नहीं? यदि थी तो क्या वाजपेयी जी उसे लक्षित नहीं कर सके थे? उत्तर स्पष्ट है। छायावाद के कवि मात्र प्रगल्भ भावोन्मेष के कवि नहीं थे, उनका प्रगल्भ भावोन्मेष उनकी स्वतंत्र चेतना का परिणाम था। उनकी स्वतंत्र चेतना के पृष्ठभूमि राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता थी। इस तत्व को वाजपेयी जी ने बात को लक्षित किया। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के परिवर्तित संस्करण की विज्ञप्ति में वे कहते हैं, छायावाद को चाहे जिस नाम से पुकारिए उसका एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। राष्ट्रीय इतिहास के जिन सुस्पष्ट प्रेरणाओं से यह उत्पन्न हुआ है और जिस आवश्यकता की पूर्ति इसने की, उसकी ओर ध्यान न देना आश्चर्य की बात होगी। इसके बाद वे प्रेरणा भूमियों को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार हिंदू जाति के नाना भेद प्रभेद के बीच एक संगठित जातीयता का निर्माण, हिंदू मुस्लिम और ईसाई आदि विभिन्न धर्मानुयायियों में एक अंतर्व्यापी मानव सूत्र का अनुसंधान, राष्ट्रों राष्ट्रों के बीच खाइयां, पाटना प्रथम महायुद्ध के पश्चात अपने देश के सामने प्रधान प्रश्न थे। देश की स्वतंत्रता का भी कुछ कम प्रधान प्रश्न न था, पर वह जातीय और राष्ट्रीय एक सूत्रता के आधार पर ही खड़ा रह सकता था और अंतर्राष्ट्रीय मानव साम्य का एक अंग बनकर ही शोभा पा सकता था। निश्चय ही यह व्याख्या वाजपेयी जी के काव्य सिद्धांत चिंतन के समाजोन्मुख होने का द्योतक है। ऐसा लगता है कि प्रगतिवाद के टकराने के बाद वे साहित्य को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ने लगे थे, किंतु किसी भी रूप में गांधीवाद की सीमाओं के बाहर जाने को तैयार न थे। नई कविता की प्रतिष्ठा के बाद भी उसके वैचारिक आधार की तलाश करते हुए वे मानवतावाद और सेकुलरिज्म तक आते हैं। वे कहते हैं, नई कविता की कुछ रचनात्मक उपलब्धियां भी हैं जो आधुनिक बोध से ग्रहित हुई हैं, जिनमें से मुख्य वह मानवतावाद है जो एक ओर आध्यात्मिक भूमिका से पृथक रहता है, दूसरी ओर वर्ग संघर्ष की कठोरता से भी रहित है। वर्तमान युग में विशेषकर भारतीय भूमिका पर सेक्युलरिज्म एक व्यापक विचार दृष्टि है, उसी का साहित्यिक रूपांतर नई कविता के मानवतावादी स्वरूप में प्रतिबिंबित हुआ है। निश्चय ही नई कविता का यह सेकुलर मानव उस सांस्कृतिक नैतिक मानव से भिन्न है जिसकी चर्चा वाजपेयी जी ने मार्क्सवाद से अपना मत वैभिन्न प्रकट करते हुए की है, जो टॉलस्टॉय और प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ा है। सेकुलरिज्म के साहित्यिक रूपांतर के रूप में प्रतिबिंबित मानव वाजपेयी जी को कदाचित इसलिए मान्य है कि वह मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष की कठोरता से रहित है। वाजपेयी जी यह भूल जाते हैं कि सेकुलरिज्म उस सांस्कृतिक नैतिक मानव की धर्म भावना से भी विरोध है जिसको वे अनुकूल पाते हैं। गांधी का सर्वोदयी मानवतावाद वस्तुगत प्रत्ययवाद का पर आधारित है। उनका सत्याग्रही मानव पूर्णतः धार्मिक है, वह सांप्रदायिक नहीं है किंतु भौतिक भी नहीं है। नई कविता का मानव आध्यात्मिक नहीं है, यह वाजपेयी जी को ज्ञात है। वाजपेयी जी अपने को आध्यात्मिक ढांचे का पक्षपाती मानते हैं। इस ढांचे को विशुद्ध भारतीय वस्तु कहते हैं। इस ढांचे के अंतर्गत मनुष्य जीवन की नैतिकता को एक स्थिर आधार पर प्रतिष्ठित अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक भूमिका से पृथक नई कविता के मानवतावाद का स्वीकार वाजपेयी जी की मजबूरी प्रतीत होती है। लगता है मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष की कठोरता से बचने के लिए उन्होंने इसे विकल्प रूप में स्वीकार किया है। यह स्वीकार उनके चिंतन की प्रकृति भूमि के अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो हम यह माने कि वाजपेयी जी के चिंतन में अंतर विरोध है, या यह स्वीकार करें कि उनके चिंतन की भूमि क्रमशः विकसित होती गई है। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं, सिद्धांतों की भूमि पर समझौता न करते हुए भी उन्होंने सिद्धांतों को बेड़ी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़कर नए विचारों, नई साहित्यिक प्रगति तथा नए रचनाकारों को अपनी अबाद स्वीकृति भी दी है। उपर्युक्त कथन में अंतर विरोध है। सिद्धांतहीन स्वीकार स्थायी हो सकता है क्या? जो प्रवृत्ति हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, उसे हम पूरे मन से स्वीकार कर सकेंगे क्या? आचार्य वाजपेयी सिद्धांतों की भूमि पर समझौता नहीं करते, यह सत्य है। वे नवीन काव्य आंदोलन पर गहराई से विचार करते हैं, यह भी ठीक है, किंतु वे स्वीकार उतना ही करते हैं जितने से उनकी मान्यताएं मूल तक खंडित न हो। उनकी एक दृढ़ मान्यता यह थी कि साहित्य को सामाजिक मूल्यों के दायरे में सीमित करके नहीं देखना चाहिए। वे साहित्य और जीवन का स्वभाव सिद्ध संबंध स्वीकार करते थे, उसे मंगलमय मानते थे, लेकिन साहित्य को राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक संगठन का प्रयोग साधन बनते नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि समाज के मूल्य साहित्य के स्वच्छंद स्वष्टवादी मूल्यों पर हावी हो जाए। प्रगतिवादी समीक्षा के अध्ययन को अंततः वे साहित्य और स्वष्टव को समृद्ध करने वाली एक दृष्टि ही मानते हैं। वे कहते हैं, इस प्रकार साहित्य के स्वष्टव संबंधी एक नई रूपरेखा और एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति में हमें दिया है। वस्तुतः छायावाद की समीक्षा के क्रम में आचार्य वाजपेयी ने स्लीगल, वाल्टर, पेटर, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, शैली, कॉलरिज आदि का जो अध्ययन किया था, उसकी गहरी छाप उनके काव्य चिंतन पर पड़ी थी। वे स्लीगल की इस परिभाषा को कि समाज का जो उच्चतम ज्ञान है, साहित्य उसी का सारा रूप है, विशेष महत्व देते रहे हैं। इस परिभाषा में साहित्य और जीवन का एक सहज अविच्छिन्न संबंध तो मान्य है, किंतु किसी का किसी पर किसी तरह का नियंत्रण स्वीकार्य नहीं है। वाजपेयी जी इसी भूमि पर स्थित होकर प्रगतिवाद और नई कविता के संबंध में विचार करते हैं। उनकी दृष्टि में नई कविता के मुख्य उपलब्धि भाषा, शैली और शिल्प के पक्ष में है। इसे वे एक प्रयोग शिल्पी काव्य कहना उचित समझते हैं। नई कविता के संबंध में लगभग चेतावनी के स्वर में वे कहते हैं, इन्हें मूल स्थापनाओं को अतिवादी सीमा तक पहुंचाने वाले 90 लेखकों और समीक्षकों ने काव्य में रस की स्थिति ही अमान्य कर दी है। वे सौंदर्य की स्थिति भी मानने को तैयार नहीं है। इसका परिणाम न केवल कविता को अकविता बना देता है, वरन उसे ऐसे व्यक्तिवादी और अनगढ़ भूमि पर पहुंचा देता है जो स्वतः नई कविता के लिए घातक वस्तु बन सकती है। आचार्य वाजपेयी को नए कवियों और समीक्षकों द्वारा नई कविता में रस और सौंदर्य की स्थिति को अमान्य कर दिया जाना घातक प्रतीत हुआ है। यह रस और सौंदर्य का समर्थन किस बात का द्योतक है? जाहिर है कि वाजपेयी जी अपने स्वच्छंदतावादी संस्कारों से अंत तक मुक्त नहीं हो सके हैं। जिस प्रकार आचार्य शुक्ल छायावाद से टकराते हुए भी अपने लोकमंगलवादी नैतिक चिंतन भूमि से बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, उसी प्रकार आचार्य वाजपेयी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता से टकराते हुए भी अपनी स्वच्छंदतावादी चिंतन भूमि का अतिक्रमण नहीं कर पाते। समाज दर्शन के स्तर पर उनकी यह चिंतन भूमि सर्वोदय को अपने निकट पाती है। सर्वोदय भारतीय नवोन्मेष का नैतिक सामाजिक पक्ष है। छायावादी सौंदर्य चेतना उसी नवोन्मेष का काल्पनिक पक्ष या काव्यात्मक रूपांतरण है। इसीलिए आचार्य वाजपेयी को बुद्धिवाद अधूरा जीवन दर्शन प्रतीत होता है। उन्हें यूरोप की भौतिक प्रगति एकांगी लगती है। बुद्धिवाद से यंत्र शक्ति का विकास हुआ, यंत्र शक्ति से ने भौतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। मानसिक संयम और उन्नयन के लिए बुद्धिवाद कोई रास्ता नहीं दिखाता, वह नैतिक जीवन के परिष्कार का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। गांधी के सर्वोदय दर्शन में दोनों का उचित सामंजस्य है। वे कहते हैं, मेरे विचार से उनकी प्रधान नीति संसार के बढ़ते हुए भौतिक विकास के साथ साथ क्षीण होती हुई मानसिक उदारता को उसकी समता पर ला सकना है। इन दोनों के बढ़े हुए भेद का नाम ही आधुनिक सभ्यता है, जिसके गांधी जी विरोधी। प्रकट है कि वाजपेयी जी का चिंतन गांधी दर्शन में अपना समाधान प्राप्त कर लेता है। नवीनतम काव्य प्रवृत्तियों के उनके समर्थन और विरोध पर विचार करते समय उनकी इस चिंतन भूमि की सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए।